नमस्कार भारत, आज सितंबर महीने की 17 तारीख दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। इसराइल में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान आज।
नेतन्याहू यहां प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं, पिछले 10-10.5 सालों से कार्यकाल कैसा रहा, माना जा रहा है कि उसी के ऊपर यहां की जनता वोट देने वाली है।
बीबीसी की पड़ताल में पता चला अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ी।
आंकड़ों से बीबीसी को पता चला है कि अगस्त महीने में हर दिन अफगानिस्तान में करीब 74 लोगों की मौत हिंसक घटनाओं में हुई है।
जम्मू कश्मीर के ताज़ा घटनाक्रम में क्या रही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका।
मूल अधिकारों को वो अहमियत नहीं दी जा रही है जो अब तक सुप्रीम कोर्ट में दी जाती थी।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नज़र महिला पहलवानों पर, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। इसराइल में आज आम चुनावों में मतदान होना है। मतदान से ठीक पहले आज सवेरे प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सेनाध्यक्ष बेनी गेंट्स दोनों नेता यरूशलेम की पश्चिमी दीवार के पास पहुंचे और यहूदियों के लिए पवित्र मानी जाने वाली इस जगह पर प्रार्थना की। माना जा रहा है कि ये चुनाव बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मतदान स्थानीय समयानुसार सवेरे 7 बजे से शुरू होंगे और रात के 10 बजे तक चलेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ने चिंता जताई है कि शनिवार को सऊदी अरब में तेल संयंत्रों पर हमले के बाद तनाव बढ़ा है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि ईरान पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। सभी पक्षों से अपील है कि वो इस तरह के हमलों को दोबारा होने से रोकें। इससे पहले अमरीका ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके ईरान पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
The United States is more prepared than any country in the history.
अगर युद्ध की जरूरत पड़ी तो किसी और देश से कहीं अधिक आज अमेरिका तैयार है। हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते और हम देखेंगे कि क्या होता है। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि इस काम को किसने अंजाम दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा हमला था और हमारा देश बड़े से बड़े हमले से आसानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि ये काम किसने किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इधर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तुर्की में रूस और तुर्की के नेताओं से मुलाकात की है। उनका कहना है कि सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर यमन के लोगों ने आत्मरक्षा के लिए हमला किया है। बीबीसी ने अपनी एक खास पड़ताल में पाया है कि अफगानिस्तान में हिंसा में आम नागरिकों के मारे जाने के आंकड़े वास्तव में कहीं अधिक हैं। बीबीसी की टीम ने अगस्त के पूरे महीने में होने वाली हिंसा की हर घटना का दस्तावेज तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में अफगानिस्तान में 473 आम नागरिक मारे गए और कुल 786 आम नागरिक घायल हुए। अगस्त के महीने में सीरिया या यमन में होने वाली मौतों की तुलना में ये आंकड़ा 3 गुना अधिक है, लेकिन सही जानकारी इकट्ठा करने में मुश्किलों के कारण अफगानिस्तान में हुई मौतों की ये पूरी तस्वीर नहीं है। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि तालिबान के मुकाबले सुरक्षा बल की कार्रवाई में अधिक आम नागरिकों की मौत हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दवान ने कहा है कि वो सीरिया से आए 30 लाख प्रवासियों को उनके देश वापस भेजना चाहते हैं। उनका कहना है कि इन प्रवासियों को देश के उत्तर में उस हिस्से में बसाया जाएगा जिसे अब सुरक्षित जगह यानी सेफ जोन बना दिया गया है। इस तरह की एक जगह को अमेरिका की मदद से बसाने की शुरुआत की जा चुकी है।
हमें
लगता है कि इस सेफ जोन में हम कम से कम 20 लाख सीरियाई लोगों को बसा सकते हैं जो फिलहाल हमारे देश में रह रहे हैं। दरअसल अगर हम इस सेफ जोन को दरअल जूर और रखा तक बढ़ा सकें तो हम करीब 30 लाख ऐसे सीरियाई लोगों की मदद कर सकेंगे जो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दवान के शब्द। एक अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने कहा है कि उत्तरी सीरिया के अल होल राहत शिविर में बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ रही है। एजेंसी का कहना है कि बीते 6 महीनों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों के मामलों में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। एजेंसी का कहना है कि बच्चों में कुपोषण, दस्त और निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं जो इन मौतों की मुख्य वजह हैं। दक्षिण अफ्रीका ने नाइजीरिया से उन हमलों के लिए माफी मांगी है जिसमें नाइजीरियाई और अन्य विदेशियों को निशाना बनाया गया था। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसे घनी आबादी वाले देश इसराइल से। इसराइल में आज का दिन प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसराइल की जनता आज मतदान के जरिए देश के नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने वाले नेतन्याहू को आज की तारीख में इसराइल का बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन क्या इसराइल में कोई दूसरा नेता भी है जो नेतन्याहू से आगे निकल सकता है? इसराइल की जनता मतदान के जरिए आज इसका फैसला करेगी। ज्यादा जानकारी मानसी दास की जुबानी।
मंगलवार यानी आज इसराइल में आम चुनाव होने हैं। चुनाव में इस बार मुकाबला है वामपंथी लिकुद पार्टी के बिन्यामिन नेतन्याहू और मध्यमार्गी वामपंथी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंट्स के बीच। इससे पहले अप्रैल में हुए आम चुनावों में नेतन्याहू की पार्टी को संसद की 120 सीटों में से 35 सीटें मिली थीं, लेकिन अन्य दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन से नेतन्याहू ने सरकार बनाई थी। यरूशलेम में मौजूद BBC के मध्य पूर्व मामलों के संवाददाता टॉम बैटमैन के पास इसराइली चुनावों से जुड़ी क्या जानकारी है, आइए सुनते हैं।
Israelis head to the polls after another turbulent and divisive campaign that could determine whether Mr. Netanyahu survives.
इस बार के चुनाव एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला करेंगे। इसी साल अप्रैल में चुनाव हुए थे जिसमें बहुमत न मिलने के कारण कई सप्ताह तक गठबंधन सरकार बनने की कवायद चलती रही थी। उस वक्त ऐसा लगा कि इसराइल में देश के गणतांत्रिक ढांचे और धार्मिक स्वरूप को लेकर विवाद था, लेकिन नेतन्याहू के सामने सरकार बनाने की संभावना को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हमने उन्हें कई वादे करते देखा है। उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर वापस लौटते हैं तो वो जॉर्डन घाटी और पश्चिमी तट की यहूदी बस्तियों पर अपना अधिकार जमाएंगे। उनके इस वादे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई और फलस्तीन ने इसे युद्ध अपराध तक कहा और कहा कि इससे शांति की कोशिशें खत्म हो जाएंगी। नेतन्याहू खुद को देश को सुरक्षित बनाने वाले और आर्थिक तरक्की लाने वाले नेता के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख की पार्टी उन्हें कड़ी चुनौती दे रही है, जिनका कहना है कि वो देश को बांटने वाली राजनीति खत्म करेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस बार फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार न बन सके। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि नेतन्याहू के लिए ये जनमत संग्रह के समान होगा। ये थे BBC के मध्य पूर्व मामलों के संवाददाता टॉम बैटमैन। तेल अवीव में जन्मे और अमेरिका में पले बढ़े नेतन्याहू 18 साल की उम्र में इसराइल लौटने के बाद सेना में शामिल हुए, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका गए। वापस लौटकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और प्रधानमंत्री यिट्साक रॉबिन की हत्या के बाद साल 1996 में सीधे चुनाव के जरिए चुने गए देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कुछ देर वो सत्ता से बाहर रहे, जिसके बाद वो फिर 2009 में प्रधानमंत्री के तौर पर वापस लौटे और सत्ता पर छा गए। उनकी यही विरासत अब चुनाव में दांव पर है।
जानकारी दे रही थी मानसी दास। इसराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक नामित प्रधानमंत्री गठबंधन बनाने में नाकाम रहा और एक ही साल के भीतर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ गई। नेतन्याहू पिछले चुनाव में मिली अधूरी जीत को इस बार पूरा करना चाहेंगे। कितनी मुश्किल हो सकती है उनकी राह, जानने के लिए मेरे सहयोगी संदीप राय ने यरूशलम में वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से बात की।
नेतन्याहू यहाँ प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर के जनादेश माना जा रहा है। यानी कि 10 साल से, पिछले 10 साढ़े 10 सालों से जो वो पदासीन है प्रधानमंत्री के पद पर, वो कार्यकाल कैसा रहा माना जा रहा है कि उसी के ऊपर जो है यहाँ की जनता वोट देने वाली है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो बदलती नजर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर जो भी सर्वेक्षण हुए उस पर नजर डाला जाए तो साफ जाहिर है कि दक्षिणपंथी पार्टियों के पास बहुमत जो है उन्हें मिलना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर सिर्फ ये है कि जिस वजह से ये चुनाव दोबारा किए जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 6 महीनों के अंदर यहाँ पर चुनाव हुआ हो, और वो था कि एक दक्षिणपंथी पार्टी जो है उसने नेतन्याहू का साथ नहीं दिया गठबंधन सरकार में, इसलिए चुनाव हो रहे। वो पार्टी जो है वो मजबूत हुई है और अगर वो फिर से वही कदम उठाती है और वो साथ नहीं देती है नेतन्याहू का, तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी।
क्या इसराइली चुनाव में भारत इसराइल संबंधों को नेतन्याहू चुनावी एजेंडा बना रहे हैं जैसा कुछ लोगों का कहना है, क्या लगता है आपको कि इससे उन्हें कोई फायदा मिलेगा?
देखिए, नेतन्याहू का जो प्रचार है उसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उनके कद का और कोई नेता नहीं है, विपक्ष जो है उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको कि नेतन्याहू की तरह पूरे विश्व में जो है उसकी पहचान बनी हुई हो, और इस वजह से ये जरूरी है कि इसराइल की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि नेतन्याहू के कद का कोई नेता जो है वो प्रधानमंत्री रहे। और इसी एजेंडा के तहत उन्होंने लिकुद पार्टी का जो मुख्यालय है उसके ऊपर कई सारे बैनर लगाए गए, उसमें एक बैनर नेतन्याहू और मोदी का भी था, साथ ही साथ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमरीकी राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ऐसे में इसराइल जिसका की मुद्दा जो है हमेशा राष्ट्रसंघ में आता रहता है, तो सिर्फ वही एक ऐसा नेता है जो कि दुनिया के बाकी और कद्दावर नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये प्रचार का उनका एक जो कैंपेन है वो पूरा इसके इर्द गिर्द घूमता रहा है। इसी के तहत भारत भी जो है वो खिंचाया है, क्योंकि मोदी के साथ उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, अपने जो व्यक्तिगत संबंध है उस पर वो बार बार जोर देते रहे। वो मोदी से मिलने के लिए भी 9 सितंबर को जाने वाले थे जो कि आखिरी वक्त पर जो है वो दौरा रद्द हो गया, और उसका भी सिर्फ अगर सही मायने में देखें तो कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं था, कोई भी विपक्षी एजेंडा नहीं था, सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा था, और ये था कि वो दिखाना चाहते कि देखिए मोदी जैसा एक कद्दावर नेता जो है वो भी मेरा व्यक्तिगत मित्र है और उसके साथ हमारे कितने अच्छे संबंध है। जहां तक इसराइल में भारतीय मूल के यहूदी जो है उनका सवाल है, तो वो पहले से ही लिकुद पार्टी को ज्यादातर लोग वोट देते रहे, और भारतीय मूल के जो यहूदी यहाँ पर हैं वो शायद नेतन्याहू को ज्यादा मात्रा में वोट दें।
भारत में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नीतियों पर इसराइल की छाप दिख रही है, खासकर कश्मीर के संदर्भ में। इसे इसराइल में कैसे देखा जा रहा है और आप इसको कैसे देख रहे हैं?
ये बयान इसराइल की तरफ से आ गया है कि कश्मीर का जो मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है और भारत उसके ऊपर अपना स्वतः फैसला कर सकता है, वो कोई इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है।
मोदी और नेतन्याहू के बीच का इक्वेशन कैसा है?
दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। दरअसल जब मोदी का यहाँ दौरा हुआ तो इसराइल में प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर देखें तो सिर्फ पोप और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उनके स्वागत में पूरी कैबिनेट जो है वो हवाई अड्डा पर मौजूद होती है। जब मोदी यहाँ पर आए तो पहली बार जो है नियम को तोड़ा गया और नेतन्याहू खुद इनके स्वागत में वहां पर मौजूद थे, और पूरी की पूरी जो इसराइली कैबिनेट है वो वहां पर, सारे इसराइल के मंत्री जो है वहां पर मौजूद थे, और न सिर्फ उनका इस तरह से स्वागत किया गया बल्कि नेतन्याहू बिल्कुल हवाई अड्डे से वापस हवाई अड्डे तक पूरे 3 दिन के दौरे के दौरान उनके साथ 24 घंटे लगातार नेतन्याहू जो है मोदी के साथ बने रहे।
यरूशलम में वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से बात कर रहे थे संदीप राय। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में 18 वर्षों तक अपनी सेना तैनात करने के बाद अब अमेरिका वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है और इस पर चर्चा भी कर रहा है। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इन चर्चाओं के बीच अफगानिस्तान के हर कोने में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। बीबीसी की इस खास पड़ताल के बारे में और जानकारी दे रही हैं मानसी दास।
आंकड़ों से बीबीसी को पता चला है कि अगस्त महीने में हर दिन अफगानिस्तान में करीब 74 लोगों की मौत हिंसक घटनाओं में हुई है। एक महीने के दौरान सुरक्षा में चूक के कुल 611 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2307 लोगों की मौत हुई है। ईद के दौरान तालिबान और अफगान सरकार ने 3 दिनों तक अनौपचारिक तौर पर युद्धविराम का पालन किया, लेकिन बीबीसी के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस दौरान 90 लोग मारे गए। 27 अगस्त को सबसे अधिक 162 लोगों की मौत हुई, ये लोग हवाई हमले में मारे गए। इसी तरह एक ही दिन में एक ही आत्मघाती हमले में 92 लोग मारे गए। बीबीसी के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान में अगस्त में मारे गए 50% लोगों की मौत के लिए तालिबान जिम्मेदार था। बीबीसी ने ये आंकड़े जुटाने के लिए खासी मशक्कत की है। इसके लिए बीबीसी ने इस साल 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच अफगानिस्तान में होने वाली 1200 से अधिक हिंसक घटनाओं की सूची तैयार की। इसके बाद बीबीसी अफगान सेवा से जुड़े पत्रकारों ने हर रिपोर्ट में उल्लेख की गई घटनाओं का पता लगाया, भले ही वो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनने वाली खबर हो या फिर हिंसा की छुटपुट घटनाएं। बीबीसी ने हर खबर की पुष्टि करने के लिए अनेक स्रोतों से संपर्क किया और इसके लिए अपनी व्यापक ग्राउंड टीम का इस्तेमाल किया। तालिबान और अफगान सरकार ने बीबीसी के इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अफगानिस्तान के नागरिक मानते हैं कि वो बेहद अनिश्चित माहौल में रह रहे हैं। तालिबान से लड़ाई में आम नागरिक अफगान सैनिकों या अमरीकी सैनिकों की गोली का निशाना बन जाते हैं। अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को अब 4 दशक हो गए हैं। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से अपनी सेना निकालना उसकी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है। सप्ताह भर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान और अमेरिका के बीच चल रही अफगान शांति वार्ता को रद्द कर दिया था। हालांकि अब भी आगे बातचीत की गुंजाइश खत्म नहीं हुई है।
अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा की पड़ताल करती बीबीसी की विस्तृत रिपोर्ट आज आप bbchindi.com पर भी पढ़ सकेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रहित में स्कूल, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से ही अभूतपूर्व स्थिति है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में क्या भूमिका रही, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता संदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल से बात की।
ये मुझे उम्मीद थी कि जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले इन सब मामलों में बहुत ही अर्जेंसी दिखाती थी, मतलब ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी एक बहुत ही अहम मुद्दा होता था सुप्रीम कोर्ट के सामने। ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टी उन लोगों के लिए भी जिनके खिलाफ कोई सबूत होता था और कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही होती थी, उन केसेस में भी जब लिबर्टी कानून के दायरे में नहीं ली गई होती थी, सुप्रीम कोर्ट बहुत अर्जेंसी दिखाती थी और सुनती थी। अब की सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बदल गई। मुझे बहुत बहुत दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में वही अर्जेंसी नहीं दिखाई। और जो कश्मीर के हालात हैं, एक तरफ से तो यही सरकार कहती थी ना कि फारूक अब्दुल्ला, पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया गया था फारूक अब्दुल्ला वो आना नहीं चाहते हैं, ये कहा जाता था, वो खुद नहीं आना चाहते हैं दिल्ली, अब उनके खिलाफ डीएसए लगा रहे हैं। मतलब कर क्या रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में किस तरीके से आगे चल के और अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं हो रहा है।
हैबियस कॉर्पस के कई मामले अदालत के सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि मूल अधिकारों को संरक्षित करने में सुप्रीम कोर्ट कामयाब रहा है?
मूल अधिकारों को वो अहमियत नहीं दी जा रही है जो अब तक सुप्रीम कोर्ट में दी जाती थी। हैबियस कॉर्पस के मामले में भी अगर अर्जेंसी नहीं दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट तो फिर कहाँ जाएगी जनता, कहाँ जाएंगे सिटीजन, कहाँ जाएंगे कश्मीर के लोग?
सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या राहत मिली है या आने वाले समय में कोई राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए 45-50 दिन हो गए हैं पर आज तक तो कोई किसी को राहत नहीं मिली। ये राहत की एक बेटी अपने माँ से जाके मिल सकती है और उसमें भी फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि तुम बात नहीं करोगी, किसी से कुछ स्टेटमेंट नहीं दोगी, कोई बीमार है तो उसको एम्स में लाया गया है। ये कोई राहत होती है हैबियस कॉर्पस में? हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? इंसान जिसको आपने गैर कानूनी तरीके से बंद रखा उसको लिबर्टी दी जाए उसकी। सुप्रीम कोर्ट है और बाकी हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को खुद पता है वहाँ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका दायित्व है वो उसे अच्छी तरीके से नहीं निभा रही। कोर्ट कचहरी वो एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें लोगों की इतनी आस्था थी, उम्मीद करती हूँ कि वो इस आस्था को नहीं भंग करेंगे। और फिर अगर ये आस्था भी भंग हो गई लोगों की तो कहाँ जाएगी जनता?
ये थी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और आइए ये आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। मानसी दास तमाम अखबारों पर नज़र दौड़ाकर स्टूडियो में आ चुकी हैं।
संदीप जी, अभी आप श्रोताओं को जो रिपोर्ट सुना रहे थे, जो कामिनी जायसवाल के साथ बातचीत सुना रहे थे, वही चीज़ जो है आज अखबारों में, सभी अखबारों में है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कश्मीर घाटी में हालात सामान्य करने की हर संभव कोशिश करें। और दूसरी एक खबर जो सभी अखबारों में है वो है सऊदी अरब में जो दो तेल संयंत्रों पर हमला हुआ था और उसकी वजह से जो तेल का उत्पादन कम हो गया था, उसी संबंध में एक कहानी लगभग हर अखबार में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की कहानी मैं आपको बता दूं, इस अखबार के अकॉर्डिंग लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में 19% का इजाफा हुआ है, जो 1991 के बाद यानी खाड़ी युद्ध के बाद अब तक सबसे अधिक है। अखबार के अनुसार इसका भारत पर बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल का 83% तेल विदेश से आयात करता है। एक खबर है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, शायद ये श्रोताओं को इसमें बहुत दिलचस्पी भी हो। नासा की मदद से मंगलवार को यानी आज इस बात का पता चल सकता है कि इसरो का चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर, उसके साथ क्या हुआ है। अखबार के अनुसार अमरीकी मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर मंगलवार को उसी जगह के ऊपर से गुजरेगा जहां चांद पर इसरो का मून लैंडर गिरा था, और हो सकता है कि वो विक्रम लैंडर की तस्वीरें जारी करे। अखबार के अनुसार ऑर्बिटर उस जगह के ऊपर से गुजरते हुए उससे पहले की और बाद की तस्वीरें दोनों नासा के साथ शेयर करने वाला है। अखबार दी हिंदू के अनुसार कांग्रेस ने कहा है कि वो अर्थव्यवस्था में सुस्ती के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ एक बैठक का आयोजन करेगी। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद संसद के बाहर पार्टी की पहली इस तरह की ये बैठक होने वाली है। अखबार ने कहा है कि हो सकता है कि इस बैठक में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना हो। हालांकि अखबार ने एक वरिष्ठ नेता से बात की है और उनके हवाले से ये लिखा है कि तारीख इस बैठक की क्या होगी अभी इसको लेकर कुछ तय नहीं है, लेकिन इस पर प्रारंभिक चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। एक खबर और मैं अमर उजाला से आपको बता दूं, इस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रदेश सरकार की जो कोशिश थी उसको झटका लगा है और हाईकोर्ट ने सरकार का जो आदेश था 24 जून का उस पर रोक लगाई है। गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ ने कहा है कि जातियों को अनुसूचित या पिछड़ा घोषित करने का जो अधिकार है ये संसद को होता है और कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। एक और खबर है हिंदुस्तान टाइम्स पर, इस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई में 20 साल के एक दलित व्यक्ति को घर में बंद कर पीटने और फिर उसे जला देने के आरोप था। इस घटना में लखनऊ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 2 महिलाएं हैं।
शुक्रिया मानसी। कजाखस्तान में जारी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में शुरुआती दिन भारत के लिए निराशाजनक रहा। ग्रीको रोमन प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे भारत के चारों पहलवान एक भी राउंड जीते बगैर बाहर हो गए। अब भारत की नजरें अपनी महिला पहलवानों पर हैं। महिला पहलवानों की तैयारी कैसी है, इस बारे में खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह ने कोच कुलदीप मलिक से बात की।
विनेश फोगाट इस बार 53 किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा करेंगी, पहले वो 50 में खेलती आई हैं। क्या 53 में भी वो इतना डोमिनेट कर पाएंगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए विनेश की हाइट ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम आती थी वजन कम करने में, लेकिन वो 53 में है, उसकी हाइट इसी हिसाब से है और पहले से भी अच्छा बेटर करेंगी 53 में, क्योंकि उसका जो रिकवरी है और बहुत फास्ट है और जो वजन घटाने के बाद जो थकावट आती थी अब वो नहीं आएगी, तो मुझे बहुत उम्मीद है। और है भी प्रैक्टिकल बात भी है कि अब विनेश जो है पहले से बेहतर कर पाएगी।
विनेश से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 6 मिनट तक स्टेमिना मेंटेन करना ये एक चैलेंज रहेगा 53 किलोग्राम में, आप भी मानते हैं विनेश की इस बात को?
हाँ बिल्कुल, देखिए ओलंपिक वजन है, हर दुनिया का हर योद्धा लड़की इसके अंदर खेलेगी और जरूरी है 6 मिनट तो कुश्ती चलेगी पक्का। स्टेमिना तो बहुत ही जरूरी है और वो अब फिलहाल विनेश के अंदर है और भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा।
विनेश पिछली फरवरी से वॉलर कोच के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है, क्या बहुत ज्यादा फायदा मिलता है अगर आप फॉरेन कोचेस के साथ पर्सनली ट्रेन करते हैं तो?
देखिए पर्सनल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा फायदा है क्योंकि मैन्युअली छोटी छोटी चीजें को गौर करता रहता है, एक रेसलर के ऊपर एक रेसलर के ऊपर काम करना पड़ता है और विनेश को उसका फायदा भी मिल रहा है, और हर एक कोच की हर एक पहलवान की अपना एक सिखाने का अलग अलग अंदाज है। और कुश्ती एक ऐसा खेल है, इसका पेज कभी खत्म नहीं होता पूरी लाइफ। अब हम भी पहलवान रहे, ओलंपिक तक लड़े, अब कोच हो गए, लेकिन कुश्ती की बारीकी बढ़ती जाती है, सीखते जाते हैं, बढ़ती जाती है। तो नेचुरल है कि विनेश से जो कोच मिले उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।
आप भारत के तो नेशनल कोच हैं ही, आप साक्षी मलिक के पर्सनल कोच भी हैं और आप ही के अंडर ट्रेनिंग करके उन्होंने रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, जो कि एक ऐतिहासिक मेडल था। ये बताएं कि साक्षी मलिक रियो के बाद इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई?
कई बार ऐसा होता है कि भाई ओलंपिक का मेडल मैंने जीत लिया है, कभी मैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर हार ना जाऊं, वो चीज साक्षी के ऊपर हैवी हो गई थी। और जो कुश्तियां बाउट निकाली है साक्षी ने, बाय चांस ग्रुप के ऊपर इधर उधर नीचे पीछे हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव हर रेसलर में आता, दुनिया का कोई भी प्लेयर है, ये ग्राफ ऐसे चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जो प्लेयर लगा रहता है एंड में उसका ग्राफ ऊपर जाता ही है। मुझे उम्मीद है कि साक्षी बहुत बेटर करेगी
इस सीजन में। साक्षी ने जो कि रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, इस समय के जो विश्व चैंपियन है, उनको भी हराया है, तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि सही समय पर उनका वापस आया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओलंपिक कोटास भी इस बार दाव पर लगे हुए हैं।
देखिए, मैं जहां तक प्रैक्टिस में तो टच में रहता हूँ, पर्सनली भी बातें करता हूँ, तो साक्षी जो है उसका हौसला बहुत बढ़ा हुआ है अब की बार, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस हौसले के को मेंटेन रहेगा और इसी हौसले से कुश्ती लड़ेगी, तो इसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है साक्षी का।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नजर अपनी महिला पहलवानों पर कोच कुलदीप मलिक से बात कर रहे थे खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह। और अब बाकी के खेल समाचार सूर्यांशी पांडे के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के ड्रेसिंग रूम में दिखाई देने के बाद दिनेश कार्तिक को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद कार्तिक ने बोर्ड से बिना शर्त माफी मांगी थी। दरअसल BCCI को दिनेश कार्तिक की कुछ तस्वीरें मिली थी, इसमें वे ट्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के ड्रेसिंग रूम में उसी टीम की जर्सी पहने ब्रेंडन मैक्यूलम के साथ बैठे थे। ट्रिनबागो के मालिक फिल्म अभिनेता शाहरुख खान हैं। कार्तिक IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान भी हैं, जिसके सह मालिक शाहरुख ही हैं। दिनेश कार्तिक BCCI की अनुमति लिए बिना ही CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुए थे। इसके बाद ही बोर्ड ने उन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने माफी मांगी और BCCI ने सोमवार को उस माफी को स्वीकार भी कर लिया। नोटिस के मिलने के बाद दिनेश कार्तिक ने 4 पॉइंट में अपने जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था कि वह कोच ब्रैंडन मैक्यूलम के अनुरोध पर पोर्ट ऑफ स्पेन गए और उन्हीं के अनुरोध पर ट्रिनबागो की जर्सी पहनकर मैच देखा। कार्तिक ने माफी पत्र में लिखा था, मैं BCCI से अनुमति नहीं लेने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैंने ना तो ट्रिनबागो से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लिया है और ना ही उसके लिए कोई भूमिका निभाई। उन्होंने बोर्ड को भरोसा दिया था कि वह त्रिनिदाद से लौटने तक बाकी मैचों के दौरान टीम के ड्रेसिंग रूम में नहीं जाएंगे। और अब बात ICC टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका की। एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही ICC टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में इंग्लैंड ने अपनी 5वीं पोजीशन बरकरार रखी। ऑस्ट्रेलिया भी इतने ही अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 4थी पोजीशन पर है। 5 मैचों की सीरीज के हर मैच के लिए विजेता टीम को 24 अंक मिले, वहीं ड्रॉ होने पर दोनों के बीच 8-8 अंक बांटे गए। एशेज सीरीज का पहला और चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो वहीं तीसरा और आखिरी मैच इंग्लैंड ने। दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। अपने शुरुआती दोनों मैच जीतने की वजह से भारतीय टीम 120 अंकों के साथ अब भी टॉप पर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसके 2 मैचों में 60 अंक हैं। अब आपको समझाते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप है क्या। दरअसल टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही 9 टीमें 2 साल के अंतराल में 6-6 टेस्ट सीरीज खेलेंगी। इसमें से 3 घरेलू और 3 विदेशी मैदान पर होंगी। एक सीरीज में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट खेले जा सकते हैं। लीग राउंड के खत्म होने के बाद शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें इंग्लैंड में फाइनल खेलेंगी।
और इसी के साथ कुछ ही देर में भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। सुनते हैं मुख्य समाचार पुनः मानसी दास से।
BBC समाचार। इसराइल में आज आम चुनावों में मतदान होना है। चुनाव में मुकाबला मौजूदा प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और पूर्व सेनाध्यक्ष बेनी गेंट्स के बीच है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ने चिंता जताई है कि शनिवार को हुए सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद तनाव बढ़ा है।
بی بی سی نے اپنی خاص پڑتال میں پایا ہے کہ اگست میں افغانستان میں 473 عام ناگرک مارے گئے ہیں اور کل 786 عام ناگرک گھائل ہوئے ہیں. اگست کے مہینے میں سیریا یا یمن میں ہونے والی موتوں کی تلنا میں یہ آنکڑا 3 گنا ادھک ہے. ترکی کے راشٹرپتی رچپ طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ سیریا سے آئے 30 لاکھ پرواسیوں کو ان کے دیش واپس بھیجنا چاہتے ہیں. بی بی سی سماچار.
नमस्कार. भारत में आज इतना ही. कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी. अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे. फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हिंदी .com हमेशा आपके साथ है. नमस्कार.